नमस्कार भारत, तारीख 29 जून दिन सोमवार, मैं हूं विनीत खरे। ग्रीस में आर्थिक संकट गहराया, बैंक बंद, एटीएम से पैसे निकालने पर पाबंदी। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश से दर्जनों की मौत।
वर्षा तो पहला बहुत जोई पण एटलू बधु पाणी नहीं।
बरसात तो पहले भी लेकिन इतना पानी कभी नहीं गिरा।
मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के एक और अभियुक्त की संदिग्ध हालात में मौत। राजस्थान के दलित दूल्हों ने बदसलूकी के खिलाफ उठाई आवाज।
कदे भी गोड़ी माल कौन छड़िया मेसन ठाकर मीणा सबका सबसे छोटा सा, तो ऐसे डर लग रहा है भाई थे मारा से क्या बड़ा बन गया।
टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन आज से शुरू, साथ में पाकिस्तान डायरी और अखबारों की सुर्खियां भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अविनाश दत्त से। ग्रीस में आर्थिक संकट के चलते आज बैंक और शेयर बाजार नहीं खुलेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सीपरास ने ये नहीं बताया कि बैंक कब तक बंद रहेंगे, लेकिन बीबीसी की जानकारी के अनुसार बैंकों को 6 दिनों तक बंद रखने के लिए कहा जा सकता है। देश को संबोधित करते हुए सीपरास ने लोगों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने यूरोपीय सेंट्रल बैंक के ऊपर ग्रीस के लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया। इसराइल में सरकार आखिरकार उस फलस्तीनी कैदी को छोड़ने के लिए राजी हो गई है जो 55 दिनों से भूख हड़ताल पर था। खदीर अदनान नाम का यह आदमी मौत के एकदम करीब पहुंच गया था। अदनान अब धीरे धीरे खाना पीना शुरू करने के लिए राजी हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि वो उन्हें 2 सप्ताह के भीतर रिहा कर देगा। अदनान को प्रशासनिक हिरासत में रखा गया है। इसराइल इस व्यवस्था के तहत फलस्तीनियों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में 6 महीने के लिए तक रख सकता है। ये 6 महीने की अवधि भी कई बार 6-6 महीने तक करके बढ़ाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए सामान ले जा रहा एक मानव रहित रॉकेट उड़ने से जरा बाद फट गया। इस निजी रॉकेट ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। स्पेस एक्स नाम के इस रॉकेट को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि अमरीकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रूस पर निर्भरता खत्म की जा सके। इस दुर्घटना के बाद नासा के प्रवक्ता विलियम ग्रिस्टन मेयर ने कहा,
The space station crew is fine on orbit again through a testimony to the space station team.
अंतरिक्ष में यात्री सकुशल हैं, वो लोग खाने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। जहां तक पानी का सवाल है, पानी अभी तो छन रहा है लेकिन हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ा धक्का है। हमने शोध के लिए कई महत्वपूर्ण मशीनों को खो दिया है। नासा के प्रवक्ता विलियम ग्रिस्टन मेयर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत अपने पूर्व निर्धारित समय सीमा मंगलवार से आगे खिंचती दिख रही है। दोनों तरफ के अधिकारियों का कहना है कि कई बड़े मुद्दों पर बातचीत 30 जून के बाद भी जारी रह सकती है। आगे की बातचीत के लिए ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ईरान के सर्वोच्च नेताओं से मशवरे के लिए अपने देश लौट गए हैं। अमेरिका में पुलिस ने न्यूयॉर्क से 3 हफ्ते पहले जेल तोड़कर भागे कैदियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। डेविड स्वेट नाम के इस कैदी को अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पकड़ा गया। जेल तोड़कर भागने वाले स्वेट के दूसरे साथी रिचर्ड मैट शुक्रवार को पुलिस की गोली से मारे गए थे। ये दोनों कैदी इसलिए चर्चा में आए थे क्योंकि ये न्यूयॉर्क की एक अति सुरक्षित माने जाने वाली जेल से भाग निकलने में कामयाब हुए थे। ट्यूनिशिया, बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं, मैं हूं विनीत खरे। शुरुआत ग्रीस से। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रस ने सोमवार यानी आज सभी बैंकों को बंद रखने को कहा है। इसके साथ ही एटीएम मशीनों से पैसा निकालने पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। उधर यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी ने ग्रीस की बैंकिंग प्रणाली के लिए और आपात सहायता नहीं देने का फैसला किया है। ग्रीस और यूरो जोन के बीच बातचीत के विफल हो जाने के बाद ईसीबी ने यह फैसला लिया है। बीबीसी के आर्थिक मामलों के संवाददाता एंड्रयू वॉकर की रिपोर्ट सुनिए अविनाश दत्त से।
ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सीपरास के पास कम ही रास्ते बचे थे। ईसीबी की घोषणा ने ग्रीस के बैंकों के ऊपर दबाव और बढ़ा दिया है। ग्रीस के बैंक जो पहले से ही केंद्रीय बैंक के ऊपर निर्भर थे, उनके दरवाजों पर पैसा निकालने के लिए चिंतित ग्राहकों की कतारें लग गई हैं। ग्रीस के लोगों को डर है कि उन्हें उनके ही पैसे निकालने से रोक दिया जाएगा या फिर उनकी यूरो मुद्रा को ग्रीस की करेंसी ड्राकमा में तब्दील कर दिया जाएगा जिसकी की कोई कीमत नहीं होगी। ईसीबी इतने सख्त कदम उठाने के लिए इसलिए मजबूर हुई क्योंकि ग्रीस और यूरोजोन के दूसरे देशों के बीच बातचीत विफल हो गई थी। ग्रीस को मंगलवार यानी कल एक बड़ा भुगतान करना है और भुगतान की अवधि समाप्त होने पर ग्रीस दिवालिया होने के एक कदम और नज़दीक आ जाएगा अगर वो ये पैसे नहीं चुका पाता है, जिसकी कि बहुत ही कम संभावना दिख रही है। सीप्रास दरअसल यूरोप के बाकी देशों से ग्रीस में जनमत संग्रह के परिणाम आने तक रुकने के लिए कह रहे हैं। इस चीज़ के लिए यूरोप के देश राजी नहीं हैं। सीप्रास ने यूरोजोन के अन्य देशों की कड़ी निंदा की है।
Οι καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως διασφαλισμένες.
सीप्रास ने कहा कि एक चीज साफ है कि जरा सी मोहलत नहीं देना, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को न मानना यूरोप के लोकतांत्रिक इतिहास की आपत्तिजनक और शर्मनाक अवमानना है। प्रधानमंत्री सीप्रास ने टीवी पर एक भाषण में जनता को शांति बनाए रखने को कहा है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनके पैसे, वेतन और पेंशन सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि ग्रीस की संपत्ति सुरक्षित है। उन्होंने ये पुष्टि तो की है कि देश में सभी बैंक सोमवार को बंद रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि बैंक कब तक बंद रहेंगे। बीबीसी की जानकारी के अनुसार बैंकों को 6 कामकाज के दिनों तक बंद रहने को कहा जा सकता है। इस दौरान खाता धारकों को दिन में 60 यूरो से ज़्यादा निकालने की अनुमति नहीं होगी। लोग बिना पूर्व अनुमति के अपने पैसे को देश के बाहर भी नहीं भेज सकेंगे। सीप्रास की इस घोषणा के बाद देश में कई जगहों पर एटीएम मशीनों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं और लोग अपने बैंकों में जमा पैसे को निकालने के लिए परेशान होने लगे। पिछले कई दिनों से हालात ऐसे हैं जिसमें ग्रीस यूरोजोन के बाहर जाता दिखाई पड़ता है। हालांकि यूरोपीय संघ का अभी भी कहना है कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर ग्रीस में बैंकों पर प्रतिबंध लंबे समय तक लगे रहे तो यह ग्रीस की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। पिछले साल ग्रीस की अर्थव्यवस्था में जान आती दिख रही थी, लेकिन अब यह देश फिर मंदी की चपेट में आ गया है।
बीबीसी संवाददाता एंड्रयू वॉकर की रिपोर्ट सुना रहे थे अविनाश दत्त। और अब कुछ भारत से जुड़ी खबरें। अरब सागर में कम दबाव के कारण गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में भारी बारिश के कारण कम से कम 70 लोग मारे गए हैं। ये वो इलाका है जहां पानी की भारी कमी रही है। अंकुर जैन की रिपोर्ट।
टूटे मकान, नष्ट हुई फसल, हारे हुए चेहरे और तबाही मचाने के बाद शांत हुई सौराष्ट्र की शेत्रुंजय नदी। यह तस्वीर है गुजरात के अमरेली की, जहाँ सालों से सूखे से लड़ते आए लोग आज बाढ़ की मार झेल रहे हैं। अमरेली में लोगों ने इतना पानी कभी नहीं देखा। यहाँ आज भी गर्मियों में लोगों को पीने का पानी 15 दिनों में एक बार मिलता है। अमरेली के सनोसरा गांव में डूबे हुए 80 मकान में से एक कांजीभाई दर्जी का है। वो कहते हैं,
आवो वर्षा तो पहला बहुत हुई है, पण इतलू बजो पानी नहीं।
बरसात तो पहले भी हुई है, लेकिन इतना पानी कभी नहीं गिरा। 1982 के साल में बहुत पानी गिरा था, पर तब भी ऐसा नहीं हुआ। इस बार सब कुछ धुल गया है, फर्नीचर, बर्तन, घर सब कुछ बह गया है। बदन पर इन पहने हुए कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। अगर सरकार मदद करेगी तो घर बनेगा, वरना झोपड़ी में जिंदगी काटनी होगी। पूछने तो कई सरकारी लोग आते हैं, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता।
बाढ़ में अब तक 70 से अधिक लोगों की लाशें मिल चुकी हैं। हजारों की संख्या में जानवर बाढ़ में बह गए हैं। ट्रेन की पटरियां और पुलों के तो नामो निशान मिट गए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने आपाधापी में शत्रुंजय नदी पर आए खोड़िया डैम के फाटक खोल दिए और इस वजह से अमरेली के 600 से अधिक गांव डूब गए। अमरेली के खिजाड़िया गांव के भूपत भाई 7 घंटों तक टूटे पुल पे खड़े रहे और उन्हें फिर हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया।
पहाड़ जितनी ऊंची लहरें मेरी ओर आई। मैं यहाँ 60 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नदी को इतने गुस्से में नहीं देखा। सरकार ने खोडियार बांध के 7 गेट लोगों को बिना बताए खोल दिए।
इस पर अमरेली के लीलिया तालुका में रहते प्राध्यापक मनोज जोशी का कहना है,
बगसरा धारी विस्तार नी अंदर जे जरूर करता वधारे એટલે કે
25 एक तो पहले ही बगसरा और धारी के इलाके में जरूरत से ज्यादा पानी गिरा। इसके साथ ही कोडियार डैम के 9 से ज्यादा दरवाजे खोल दिए गए, जिनकी किसी को कोई खबर ही नहीं थी। लोगों को बाढ़ का अनुमान था ही नहीं। अगर सरकार पानी छोड़ने से पहले बता देती तो जान माल का इतना नुकसान नहीं होता।
मनोज ये भी मानते हैं कि मरने वालों की संख्या 70 से कहीं ज्यादा है और मलबे के नीचे अब भी लोग दफन हैं। सरकार ने मरने वालों के परिवार वालों को 4 लाख देने की घोषणा की है। अमरेली के कलेक्टर HR सुथार कहते हैं कि उनके हाथ में जितना था वो उन्होंने किया।
मैंने इरिगेशन वाले इंजीनियर को बुलाया था दोनों विंग के, उन्होंने बताया कि सर हमने खोला तो तुरंत हमने वो 30 करोड़ पर देने के लिए इंस्ट्रक्शन पर दे थी और सूचना भी आ गई थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि ये जब बारिश चालू थी तभी बिजली चली गई थी, कुछ असर तो बारिश के वक्त की हो गई थी तो इसलिए ज़्यादा असर हो गई, और जो बारिश है वो और फ्लड है तो है ही।
जिनके मकान गिर गए हैं उनके घर के हर सदस्य को 10 दिन तक 60 रुपये सरकार देगी, पर कलेक्टर साहब के पास इस बात का जवाब नहीं है कि क्या 60 रुपये से उनका गुजरान हो जाएगा। इस बाढ़ से सबसे ज्यादा पीड़ित अमरेली का किसान है जो कभी सूखे की वजह से आत्महत्या करता था। कहीं खेतों के नीचे इतना मलबा जमा है कि वहां अगले 5 साल तक खेती नहीं हो पाएगी। अब किसान नम आंखों और डूबे हुए खेतों के साथ गुजरात सरकार पर अपनी उम्मीद लगाए बैठा है। अंकुर जैन, अमरेली, BBC।
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में जेल में बंद एक और अभियुक्त की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। मृतक के परिवार ने पूरे घटनाक्रम पर संदेह जताया है। व्यापम घोटाले में दर्जनों लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी है, जिसे लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। व्यापम सरकारी नौकरियों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए परीक्षाएं करवाती है। ये संस्था कथित तौर पर हजारों फर्जी परीक्षा परिणामों को लेकर जांच के घेरे में है। भोपाल से शुरे नियाजी।
मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शनिवार रात जहां इंदौर जेल में बंद पशु चिकित्सक नरेंद्र सिंह तोमर की संदिग्ध हालत में मौत हुई, वहीं रविवार को सागर के मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर राजेंद्र आर्य भी चल बसे। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से ताल्लुक रखते थे और अभी सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के तौर पर रायसेन में पदस्थ थे। नरेंद्र पर आरोप था कि उसने एक छात्र को पैसे लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाया था। नरेंद्र तोमर के परिवार के लोगों ने उनके साथ मारपीट का संदेह जताते हुए CBI जांच की मांग की है। नरेंद्र ने शनिवार रात को सीने में दर्द की शिकायत की थी, उसके बाद उन्हें महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। उनके मित्र सुमित ने बताया,
हमें ये स्पष्ट नहीं है उनकी डेथ कैसे हुई है। उनकी बॉडी तो अब ले जा चुके हैं उनके घर वाले घर पे। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। मतलब जिनसे भी पूछते हैं कोई स्पष्ट जानकारी देता नहीं है। मतलब जो जेल प्रशासन था वो ये नहीं बता रहे हैं कि डेथ कहाँ हुई है, कैसे हुई और कब कहाँ लाए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल वाले भी कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं।
वहीं सिटी SP अजय जैन ने कहा कि उनकी मौत की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी।
नहीं, इसके इन्वेस्टिगेशन तो जो मजिस्ट्रेट है वो करेंगे ना, मजिस्ट्रेट कर रहे हैं इसकी जांच को।
विपक्षी कांग्रेस का दावा है कि जिस तरह से अब बड़े लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है, इस मामले से जुड़े सबूतों को मिटाने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता KK मिश्रा ने कहा,
मेरी जानकारी के अनुसार आज 42 की मौत हुई है। एक इंदौर में जो मौत हुई है नरेंद्र सिंह पिता कैलाश तोमर की, जो मुरैना के निवासी हैं, और दूसरी मौत अभी मुझे किसी ने जानकारी दी कि डॉक्टर राजेंद्र आर्य इज बिलोंग फ्रॉम सागर, उनकी मौत ग्वालियर में हुई है और वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है।
इस घोटाले में अधिकारियों, नेताओं और बड़े लोगों का एक ऐसा नेटवर्क बना कि संविदा शिक्षक से लेकर PMT तक में पैसे लेकर फर्जी लोगों को प्रवेश दे दिया गया।
भोपाल से ये थे पत्रकार शुरे नियाजी। राजस्थान में प्रकाश में आए एक मामले में एक दलित दूल्हे ने दबंगों की परवाह न करते हुए घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात निकाली। हालांकि इसके लिए दूल्हे को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बीते 3 वर्षों में दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने या बारातियों के साथ बदसलूकी को लेकर 26 मामले सामने आए हैं। जयपुर से आभा शर्मा।
ओम सावित्री नमः, ओम देव सेनाय नमः।
जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से महज 6 किलोमीटर दूर है कोटपुतली तहसील का पाथरेड़ी गांव। जब 23 वर्षीय दूल्हा अनिल पास के ही जाजपुरा गांव में मनीषा को ब्याहने गया तो बारातियों से ज्यादा संख्या पुलिस कर्मियों की थी। कारण, अभी भी राजस्थान के बहुत से गांवों में दलित दूल्हों की घोड़ी पर बारात निकालने को अन्य वर्गों द्वारा हिमाकत समझा जाता है। मौका तो खुशी का था, पर दूल्हे की मां प्रेम इतनी डरी हुई थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई। 22 साल पहले भी एक बार जब उनके परिवार ने बाण बिंदौरी निकाली थी, यानी जब घोड़ी पर बैठकर दूल्हा कुलदेवता की मंदिर तक गया था तो कथित उच्च वर्ग के लोगों ने सब तरफ से रास्ता रोक लिया था और ज़बरदस्त संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। उन्होंने बीबीसी को बताया,
गोड़ी माल निकला जब देखे थे डर लग रहा था, फिर मेरे बीपी हो गई थी, 3 दिन में रोटी कौन खाई, अभी डर लग रहा है ना, छोटी जाति हम घर है घर हाँ, तो कदे भी गोड़ी माल कौन छड़ा, मैं था ना ठाकर मीणा सबका सबसे छोटा सा, तो ऐसे डर लग रहा है भाई थे मारा से क्या बड़ा मन गया, अब छोटी जात छट गई ना गोड़ी माल तो क्या हमारे से बड़ा मन गया।
पर दूल्हे के बड़े भाई इंद्रराज ने ठान रखी थी कि उनके भाई की बारात निकलेगी तो घोड़ी पर ही। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई। अनिल के 75 वर्षीय दादा पांचूराम अटल कहते हैं कि वो अपनी शादी में पैदल ही गए थे। उनके बेटे नाथूराम भी पैदल ही प्रेम देवी को ब्याहने गए। वो बताते हैं,
मैं तो पका पका गया था, तो बूढ़ो छिड़को से पका गए।
तो आपने गांव के किसी भी दलित परिवार में और कोई बारात आते जाते घोड़ी पर देखी?
कौन देखी?
ये जो आपके परिवार ने ये काम किया तो ये क्यों किया, मतलब क्या सोच के किया?
क्या सोच के करिया, बढ़ाई की खातिर करिया, बस्ती की बढ़ाई होगी, बस्ती की बढ़ाई होगी, मारी बढ़ाई होगी।
पर ये तो थोड़ा जोखिम वाला काम है ना, जैसे आपकी बहू बता रही हैं कि भाई जो दूसरी जाति वाले लोग इस बात से नाराज हैं।
हाँ तो नाराज रहता रोजना, क्या आपने के लेंगे फिर।
इंद्रराज कहते हैं शिक्षा और जागरूकता की कमी से उनका परिवार अभी तक यह हिम्मत नहीं कर पाया।
अरे तो अपना हक था भाई, देश आज़ाद हो गया और अभी तक हम गुलाम ही है, तो इसलिए मैं बहुत पहले से सोच रहा था, इससे पहले जो भी शादी होती छोटी उम्र में कर देते, या तो छोटी उम्र में कर देते तो कर नहीं सकते ऐसी व्यवस्था, या फिर हिम्मत नहीं थी, परिवार वाले हार जाते, क्या होगा आगे क्या होगा, तो किसने हिम्मत नहीं की।
उधर दूल्हे अनिल ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि वे अपने बड़े भाई के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं जिनकी मेहनत और भाग दौड़ से उनका सपना सच हुआ।
पढ़े लिखे होने के बावजूद जो 21वीं सदी चल रही है वो कहाँ जमाना है, फिर भी हम इतने पढ़ लिख के भी ये कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा वो ही है, इसलिए हमने कुछ पढ़ा लिखा है तो इसलिए ना हमने हिम्मत हुई कि हम ये से करके रहेंगे, तो इसलिए हमने कुछ प्रयास किया इसलिए हो पाया ही।
करीब 4200 वोटरों वाले इस गाँव में दलित परिवारों के मुकाबले ठाकुर और मीणा जाति के घर अधिक हैं। गाँव के 80 वर्षीय बुजुर्ग गोपीराम मीणा हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहते हैं, पहले घोड़े या ऊंट गाड़ियों से बारात ले जाना ऊंच नीच पर नहीं बल्कि सामर्थ्य पर निर्भर था।
घोड़ी पर भी निकलने का रिवाज नहीं था, ये सामर्थ्य के ऊपर था। मान लो किसी की शक्ति मतलब घोड़ी लाने की थी, किसी की नहीं थी, तो हम तो पैदल ही गए थे मंदिरों में। और 1949 में मेरी शादी हुई, 23 जनवरी को मेरी शादी थी, तो ऊँटों पर गए थे, मतलब जब न घोड़ा गाड़ी था न और कुछ था, पैदल यात्रा करते थे।
इंद्रराज की शादी आगामी नवंबर में है। वो कहते हैं कि मैं भी अपनी शादी में घोड़ी पर जरूर चढ़ूंगा। हाँ, लोगों द्वारा दी जा रही उड़ती उड़ती धमकियों को लेकर अपने परिवार के लिए चिंतित जरूर हूँ।
बिल्कुल, मैं तो घोड़ी पे निकालूंगा और 100% निकालूंगा, शुरू से नहीं डरा मरने जीने से। वैसे अगर मान लो डर के रहेंगे तो वैसे मरा हुआ है, और ये तो अपना हक है, हक तो लेकर रहेंगे ना।
इस दलित परिवार की युवा पीढ़ी अपने निश्चय पर अटल है और इंद्रराज सब युवा वर्ग की बुलंद आवाज बनकर उभरे हैं। छोटी बहन कविता को भी उस दिन का इंतजार है जब उसका दूल्हा भी घोड़ी पर सवार होकर उसे लेने आएगा। कोटपुतली से आभा शर्मा।
बीबीसी हिंदी सेवा में सुन रहे हैं आप नमस्कार भारत, मैं हूं विनीत खरे और अब पाकिस्तान डायरी वसुतुल्लाह खान से।
पिछले महीने कोलकाता में अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल को पश्चिमी बंगाल की उर्दू एकेडमी ने जश्न इकबाल में अपना मेहमान बना के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों तराना हिंदी अवार्ड दिलाया। वही इकबाल जिसका सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा अखिल भारत में गैर सरकारी कौमी तराना है। वही इकबाल जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने सच कर दिखाया। मैं पिछले हफ्ते वलीद इकबाल के पिताजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भूतपूर्व जज और अल्लामा इकबाल के सबसे चहीते बेटे जावेद इकबाल का एक इंटरव्यू देख रहा था। میں نے سوچا کہ آپ لوگ سیما کے آر پار اڑنے والی تڑیاں سن سن کے اکتا گئے ہوں گے، تو علامہ اقبال کے سپتر کی بات بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے پتا نے 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد جلسے میں کسی سوتنتر مسلم دیش کی بات نہیں کی، بلکہ انڈین یونین کے اندر مسلم بہومت والے علاقوں کی خود مختاری کی بات کی تھی۔ بالکل یہی بات 1946 کے کیبنٹ مشن پلان میں بھی کی گئی، جسے جناح صاحب نے ترنت سویکار کر لیا، مگر نہرو جی اڑ گئے تو جناح صاحب بھی ایک الگ دیش پہ اڑ گئے۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے بنایا، بلکہ پاکستان تو نہرو اور پٹیل کی ضد نے بنایا، اور یہ بات مولانا ابوالکلام کی موت کے بعد سامنے آنے والے انڈیا ونز فریڈم کے پنوں اور جسونت سنگھ کی کتاب جناح انڈیا پارٹیشن فریڈم میں بھی مانی گئی۔ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ ہمارا بھوش مسلم دنیا سے نہیں بلکہ دکشن ایشیا سے جڑا ہوا ہے۔ میں خود کشمیری ہوں، اور اگر اس وقت میں وادی میں رہ رہا ہوتا تو بھارت اور پاکستان دونوں سے آزادی چاہتا۔ یہ پورا علاقہ نفرت سے پاک ہو سکتا ہے اگر کشمیر کو بھوٹان اور نیپال جیسی آزادی مل جائے، اور پاکستانی کشمیر بھی اس نئے کشمیر کا انگ بن جائے، اور نئے کشمیر کی خود مختاری اور ناوابستگی کی ضمانت بھارت اور پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا، رشیا اور امریکہ بھی دیں۔ پھر دیکھیں کشمیر سوئٹزرلینڈ کی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس بھاری پتھر کے ہٹنے کے بعد کشمیر سمیت سب سارک دیشوں کو یورپی یونین کے راستے پہ چلنے کا موقع مل جائے گا، اور غربت کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ مگر مسلمان اور ہندو مولوی کے لیے یہ آئیڈیا ہضم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک سیکولر آئیڈیا ہے۔ ایک خواب اقبال نے دیکھا اور دوسرا خواب اقبال کا بیٹا دیکھ رہا ہے۔ ویسے ایک بات تو بتائیے، ہم لوگ بدھی جیویوں اور یدھی جیویوں میں تمیز کرنا کب سیکھیں گے؟ 56 انچ کے سینے تو بھارت اور پاکستان میں بہت ہیں، 56 انچ کا دل کہاں پایا جاتا ہے؟
یہ تھی وسط اللہ خان کی پاکستان ڈائری، اور اب اویناش دت کے پاس چلتے ہیں آج کے اخباروں کی سرخیوں کے بارے میں جاننے۔ دینک بھاسکر سب سے اوپر ہے آپ کے پاس؟
جی، دینک بھاسکر ہے، دینک بھاسکر کے نیچے نو بھارت ہے، نو بھارت کے نیچے امر اجالا، ٹائمس آف انڈیا، ہند، مطلب کل ملا کے ہندی انگریزی کے تمام اخبار میرے سامنے ہیں، اور تقریباً سب میں ونیت ایک پردھان منتری کے من کی بات کی خبر ہے، وہ تو رہنی ہی تھی، لیکن سارے لوگ جو ہے پردھان منتری نے کیا بولا اس پر تو بات کر ہی رہے ہیں، لیکن زیادہ بات کر رہے ہیں اس پر کہ پردھان منتری نے کیا نہیں بولا۔ اب یہ میرے سامنے آپ نے کہا دینک بھاسکر ہے، دینک بھاسکر میں ہیڈ لائن ہے، پہلی خبر ہے، سپنے بیچنا چھوڑ کر لوگوں کی اپیکشائیں پوری کریں مودی آزاد نے کہا، اور یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے من کی بات چھوٹے اکشروں میں، پردھان منتری نے للت گیٹ پر نہیں توڑی چپی، وپکش نے اٹھائے سوال۔ یہاں ایک چھوٹی سی سی بات میں بس انہوں نے کر دیا ہے کہ بہنوں کو جن سرکشا یوجنا کا گفٹ دیں، اور مودی کی جو سیلفی والا ایک وہ تھا کہ بیٹیوں کے ساتھ سیلفی کو لیں، وہ اس کے اوپر اس کی بات ہے۔ اس کے بعد نوبھارت ٹائمز پہ آؤں تو اس میں ہیڈ لائن ہے، پی ایم دو جگہ بولے پر للت مودی سے جڑے وواد پر چپی رکھی، مودی مون، کانگریس بے چین، للت گیٹ پر من کی بات میں بھی مودی مون۔ ٹائمس آف انڈیا کہتا ہے نمو سائلنٹ آن لمو ان ریڈیو ٹاک ڈراز اپوزیشن فائر، یعنی نریندر مودی للت مودی کے اوپر چپ رہے، ریڈیو میں بھی کچھ نہیں بولے۔ اس کے علاوہ چند خبریں ہیں ونیت، جو کہ یہ تو اب میں کتنے اخباروں کی سرخیاں گناؤں، ہر اخبار میں کم و بیش اسی کی بات گول گول گھوم کر ہے۔ ایک خبر ہے نوبھارت ٹائمز میں کہ یو پی میں کئی جگہ سامپردائک تناؤ ہے، یہ لکھنؤ اس سے خبر ہے، یہ فیض آباد میں کچھ جگہ کسی سوشل نیٹورکنگ سائٹ میں فیس بک اور اس پہ کچھ اس طرح کی آپتی جنک چیزیں تھیں جس سے لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ اور اس کے بعد ایک خبر انڈین ایکسپریس میں ہے، انڈین ایکسپریس کی خبر کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا، یوگا میڈ مسٹ فار پیراملٹری، گورنمنٹ سیکس ایکشن ٹیکن رپورٹس، یعنی یوگ جو تھا جس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہوا تھا اس کو پیراملٹری فورسز کے لیے مسٹ یعنی اپریہاریہ کر دیا گیا ہے، ضروری کر دیا گیا ہے۔ और गवर्नमेंट सीक्स एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी सरकार ये पूछ रही है तमाम जो इतने सीमा सुरक्षा बल हों, चाहे CISF हों, चाहे दूसरे वो हों, उनसे ये पूछ रही है पैरामिलिट्री से कि भाई ये बताएं कि आपने क्या क्या किया है और कि कितनी तरक्की हुई है इस बात में, कैसे लोगों से आप करा रहे हैं। इसके अलावा हिंदू की एक ख़ास खबर है, अगर आपको याद ही होगा, जिक्र हुआ ही था अभी 2-3 दिन पहले, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह की अनुमति दे दी थी पूरे अमेरिका में, इसको लेकर पूरी दुनिया में खबरें छाई हुई थी। अब द हिंदू की खबर है, फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग गे कपल मेक अ बी लाइन फॉर US, यानी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद भारत से लिए समलैंगिक जो जोड़े हैं वो अमेरिका की ओर रुख कर रहे हैं।
शुक्रिया अविनाश आपका। टेनिस प्रतियोगिता विंबलडन आज से शुरू हो रही है, एक खास रिपोर्ट के साथ लंदन से अपूर्व कृष्ण।
विंबलडन के शुरू होने का समय आ गया है। इस विशेष प्रस्तुति में आपके साथ हूं मैं अपूर्व कृष्ण। सोमवार यानी 29 जून से रविवार 12 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी लंदन में स्थित विंबलडन नाम के इलाके में दुनिया के चोटी के टेनिस खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त संघर्ष होगा। इस साल विंबलडन में पुरुष सिंगल्स में एक बार फिर दिग्गजों पर नजर होगी। वरीयता सूची में पहले नंबर पर हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच, दूसरे पर हैं स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर, तीसरे पर ब्रिटेन के एंडी मरी और चौथे पर स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका। दो बार विंबलडन जीतने वाले और एक समय में फेडरर को कड़ी टक्कर देने वाले स्पेन के राफेल नडाल वरीयता सूची में 10वें नंबर पर हैं। इस बार विंबलडन में सबसे ज्यादा चर्चा है नोवाक जोकोविच और एंडी मरी की। पिछले साल के विंबलडन विजेता जोकोविच दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी हैं। वे 8 ग्रैंड स्लैम मुकाबले जीत चुके हैं जिनमें 2 विंबलडन खिताब शामिल हैं। अपने 3 विंबलडन फाइनलों में से वे अब तक केवल एक ही बार हारे हैं 2 साल पहले, और उन्हें मात दी थी ब्रिटेन के एंडी मरी ने। इस साल नोवाक जोकोविच और एंडी मरी जबरदस्त फॉर्म में हैं। जोकोविच ने इस साल अब तक हुए दोनों ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में से ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है, मगर फ्रेंच ओपन के फाइनल में स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका ने उन्हें हराकर सबको हैरान कर दिया। और जहां तक विंबलडन में भारतीय खिलाड़ियों की बात है तो इस बार विंबलडन में एक भी भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स मुकाबलों में नहीं खेल पाएगा। विंबलडन में अब भारतीय नाम डबल्स मुकाबलों में नजर आएंगे, जहां लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना के अलावा पूर्व राजा अपने जोड़ीदारों के साथ मैदान पर उतरेंगे। महिला वर्ग में पहले नंबर पर हैं अमेरिका की सरीना विलियम्स, और इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्पी उनके खेल पर रहेगी क्योंकि वो बना सकती हैं सरीना स्लैम। 33 वर्षीय सरीना इस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं, और अब अगर उन्होंने विंबलडन और फिर US ओपन भी जीत लिया तो 1988 में जर्मन खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ के बाद एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली वो पहली खिलाड़ी बन जाएंगी। रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं पिछले साल की विजेता चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा। वे 2011 में भी विंबलडन विजेता रह चुकी हैं, मगर इस बार उनकी फिटनेस को लेकर चिंता रही है। महिला वर्ग में तीसरे नंबर पर हैं रोमानिया की सिमोना हालेप। उन्होंने अभी तक कोई ग्रैंड स्लैम मुकाबला नहीं जीता है। विंबलडन में चौथी सीट पर हैं रूस की मारिया शारापोवा, जिन्होंने 2004 में केवल 17 साल की उम्र में विंबलडन विजेता बनकर बड़े जोरदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। और महिला वर्ग में अब चर्चा भारत की, जहां एक बार फिर कोर्ट पर होंगी सानिया मिर्जा। हालांकि सानिया ने 2012 के बाद से सिंगल्स खेलना छोड़ दिया है और अब वो केवल डबल्स खेलती हैं। अभी तक वो मिक्स्ड डबल्स वर्ग में 3 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं, मगर महिला डबल्स में अभी तक जीत उनसे दूर है। हालांकि इस बार विंबलडन से उन्हें काफी उम्मीद होगी।
लंदन से ये थे अपूर्व कृष्ण, और कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। ग्रीस में आर्थिक संकट के चलते आज बैंक और शेयर बाजार नहीं खुलेंगे। ग्रीस की सरकार ने अभी ये नहीं बताया है कि ये बैंक कब तक बंद रहेंगे। इसराइल में सरकार आखिरकार उस फलस्तीनी कैदी को छोड़ने के लिए राजी हो गई है जो 55 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। कदीर अदनान नाम का यह आदमी मौत के एकदम करीब पहुँच गया था। अदनान अब धीरे धीरे खाना पीना शुरू करने के लिए राजी हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए सामान ले जा रहा एक मानव रहित रॉकेट उड़ने से ज़रा बाद फट गया। इस निजी रॉकेट ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत अपनी पूर्व निर्धारित समय सीमा यानी मंगलवार से आगे खींचती दिख रही है। दोनों तरफ के अधिकारियों का कहना है कि कई बड़े मुद्दों पर बातचीत 30 जून के बाद भी जारी रह सकती है। BBC समाचार।
शुक्रिया अविनाश आपका, शुक्रिया देवशीष कुमार का भी जो स्टूडियो संभाल रहे थे। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद विश्व भारती में।